मैन ऑफ द मैच होता है, मैन ऑफ द सीरीज होता है, लेकिन कमेंटेटर्स और टीम मैनेजमेंट के कुछ लोग आपको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बोलते हैं, क्या लगता है आपको?
बहुत ही अच्छा लगता है कि एक टीम का रिस्पॉन्सिबल प्लेयर अगर वो लोग मानते हैं, और एक टीम का वैल्यूएबल प्लेयर, जैसे कि कोई भी सिचुएशन में अगर टीम को ज़रूरत होती है, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो और फील्डिंग हो, तो पर्सनली एक अच्छा लगता है कि कोई भी आदमी मेहनत करता है तो एक उसका एम वही होता है कि टीम का एक वैल्यूएबल प्लेयर माना जाए। तो बस मुझे अंदर से यही एक मेरा अचीवमेंट है कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज से ज़्यादा अगर टीम को ज़रूरत होती है और टीम चाहती है कि नहीं ये वैल्यूएबल प्लेयर है, तो ये पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरे ख्याल से क्रिकेट में तो बहुत सारे अच्छे दिन आते हैं, मतलब जब भी परफॉर्मेंस करता हूँ वो टीम इंडिया के लिए ही मैं करता हूँ, तो टीम इंडिया के लिए, जब भी मैं परफॉर्मेंस करता हूँ मेरे लिए हमेशा ही मेमोरेबल रहता है, क्योंकि इंडिया के लिए कोई भी मैच इजी नहीं होता है, तो जब भी मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो हमेशा मेरे लिए एक मेमोरेबल रहता है, और टीम के लिए और मेरे लिए खुद के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होता है कि जब भी मैं टीम के लिए कुछ अच्छा करता हूँ, जब टीम को एक्चुअल में ही ज़रूरत होती है और तब मैं वहाँ से टीम के लिए कुछ अच्छा करता हूँ, तो मेरे लिए और टीम के लिए मेमोरेबल होता है। थोड़ा टफ था क्योंकि विकेट भी सीमिंग था, बाउंस था, और उनके फास्ट बॉलर 140 प्लस डालने वाले, तो चैलेंजिंग था। शुरुआत में नई बॉल थी तो अच्छा लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में अगर ये टाइम भी अगर फेस करना होता है तो कई कई बार देखा होता है, और आज खेल के भी ऐसे अच्छा लग रहा था कि भाई टेस्ट क्रिकेट का जो चैलेंज होता है, जो लोग बोलते हैं कि ये टफ होता है, तो वो आज रियलाइज़ हो रहा था। डिफरेंस तो ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि उनके बॉलर्स भी अच्छे एरियाज में बॉल डाल रहे थे, हमारे में भी हमारे बॉलर भी दोनों अच्छे एरियाज में बॉल डाल रहे थे, बट बात ये कि कभी कभी बैट्समैन इतनी बार बीट होता है, बॉल एज नहीं लगता है, कभी कभी अच्छे अच्छे बॉल में भी बैट्समैन बीट हो जाता है, और कभी डायरेक्ट सीधा एज लग जाता है। तो मेरे ख्याल से आज जो वॉर्नर का सीधा ही एज लगा, वो बीट नहीं हुआ, तो वही एक टीम के लिए ब्रेक थ्रू था कि अटली दो तीन विकेट, तीन विकेट गिर गए, तो वही टीम के लिए एक बोनस था। और हमारा अपर एंड ये था कि हम लोग 30 रन आगे थे, 30-32 रन कुछ आगे थे ऑलरेडी, और वहाँ से ही वो मोमेंटम हमारी तरफ जा रहा था, तो बस सभी लोग अच्छा एकदम पॉजिटिव ग्राउंड में लंच टी के बाद सभी लोग पॉजिटिव थे कि कभी भी गेम पलट सकता है, और जैसे स्पिनर्स ने भी, मैंने, ऐश और कुलदीप ने खैर इतना बॉल नहीं डाला, बट सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, तो मेरे ख्याल से यही होता है कि जब अगर टीम अच्छा करती हो तो सबका कलेक्टिवली परफॉर्मेंस होता है। कुछ नहीं, बस वो टाइम पे रन आने बहुत ज़रूरी थे क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट स्कोर के आजू बाजू थे, 300 के आजू बाजू थे, तो वो टाइम पे रन आने बहुत ज़रूरी थे क्योंकि मैं और साहा के बाद इतना बैटिंग था नहीं, तो बस मैं और साहा यही बात कर रहे थे कि जितना हो सके उतना रन हम दोनों के बीच में पार्टनरशिप में आएगा उतना अच्छा है, और जितना पहले जब मैं साहा के साथ बैटिंग करने गया तो वही सोच रहा था कि जितना हो सके उतना 300 के नज़दीक जाए, फिर अगर 300 तक हम दोनों खेल रहे तो फिर बड़े शॉट्स के लिए जा सकते हैं। वो तो सर हमेशा देखने को मिलेगा आपको, बट
थैंक इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं लगातार, तो उसके बारे में कुछ बताइए जो एफर्ट जा रहा है या जो आपकी अप्रोच रही है।
कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में भी मैं अच्छा कर रहा हूँ। अभी तक वनडेज इतना खेला, तो अभी ये साल इतने सारे टेस्ट मैच खेला और अच्छा भी मैंने किया। खुद का एक सेटिस्फेक्शन आता है कि अब मैं आप दोनों फॉर्मेट के लिए मैं अपने आप को सूटेबल मानता हूँ, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस अलग ही बिल्ड होता है कि मैं अपने आप को लंबे वर्जन के लिए भी और आगे लंबा क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं अपने आप को ऐसे सोच सकता हूँ। और बॉलिंग की बात तो अभी ये शोल्डर ऑटो मोड पे है, अभी अपने आप ही सब कुछ हो रहा है।
जिस तरह की ये सीरीज रही है बहुत क्लोज फॉर्ट रही है, तो वैसे देखते में या सुनने में 30-32 बहुत ज्यादा रन नहीं लगते हैं, लेकिन जब वो लीड आ जाती है तो ड्रेसिंग रूम में या बाकी प्लेयर्स में पूरे टीम में जो पूरा माहौल होता होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाता होगा, तो साइकोलॉजिकली या टीम के मोरल के लिए वो 30 रन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं जब लीड आ जाती है।
बिल्कुल ही, वो हर एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे विकेट का कंडीशन कैसा है। कभी कभी 20-30 रन की लीड भी बहुत होती है जैसे आपने कहा, क्योंकि विकेट से अगर अनइवन बाउंस हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, क्रैक में से बॉल कट हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो कुछ भी 30 रन उनके 30 रन के अंदर ही 3 आउट थे। तो मेरे ख्याल से वो जो 30-40 रन वो लीड मिलता है तो वो बहुत ही क्रूशियल रहता है। और एक वो डर नहीं रहता है कि हम लोग बैक फुट पे है तो हम खुल के फिर जैसे सेकेंड इनिंग में बॉल डालने आते हैं तो बॉलर एकदम खुल के बॉल डालता है, अपना जो इतना दिमाग में प्रेशर नहीं होता है तो बिंदास बॉल डाल सकता है। नहीं, वो कुछ हुआ तो नहीं था। अब आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि ग्राउंड पे ऐसा होता है तो क्या होता है। तो बस यही बात कर रहे थे कि जब फ्री होंगे मैच के बाद आप लोग हार जाओ तो खाएंगे, डिनर विनर साथ में करेंगे।
रविंद्र, पिछले सिचुएशन पहला बॉल दिन का आपको कॉट आउट करा दिया गया, आपने रिव्यू किया, आप बच गए, कितना मेंटली अनसेटलिंग होता है इसके बाद जब 60 बना?
नहीं, जैसे मैंने कहा कि टफ तो था क्योंकि फास्ट बॉलर को हेल्प हो रहा था और सेकंड न्यू बॉल ऑलमोस्ट था तो बाउंस भी अच्छा था और उनके फास्ट बॉलर थोड़े तेज भी थे, तो पहले बॉल पे ऐसे अच्छा हुआ कि जब पहले बॉल पे ही हो गया तो क्योंकि बीच में वो डिस्टर्बेंस नहीं आता है कि एक बार वो फर्स्ट बॉल पे ही हो गया तो बस हो गया। और मैं श्योर था कि लगा नहीं था, बट उसके बाद जो एक मैं और साहब बात कर रहे थे कि बस थोड़ा सा टफ सिचुएशन है बट हमें ये खेल के निकालना होगा। देखिए, जब मतलब अगर हम उस टाइम पे जब वो नंबर 10 और 11 को बाउंस कर रहे थे तब ऑलरेडी हम अच्छी पोजीशन पे थे तो वो कुछ मैटर नहीं कर रहा था। वो लोग अपनी जो विकेट नहीं ले पा रहे थे और उन्होंने सही टाइम पे विकेट नहीं ले पाए तो उसका वो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था और कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 30 रन आगे थे जब वो 9 और 10 और 11 बैटिंग कर रहे थे तब। तो मेरे ख्याल से वो एक फास्ट बॉलर का एक वही अंदाज रहता है कि जब टैलेंडर आता है तब उसको थोड़ा डरा के बाउंसर डाले, क्योंकि जो 20-30 रन लास्ट के हमेशा क्रूशियल रहते हैं कि अगर वन डेज में भी देखे और डेज मैच में देखे, वो 20-30 रन जब 10 और 11 नंबर का बैट्समैन रन बनाता है तो वो हमेशा खलता है।